بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، جشن ولایت یعنی جشن عید غدیر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سامراج کے خلاف ایرانی عوام کے جد و جہد کا قومی دن۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آج ایرانی کیلنڈر کے مہینے آبان کی 13 تاریخ ہے، اور اس اعتبار سے گزشتہ 60 برسوں میں مختلف واقعات رونما ہوئے ایران میں۔ لیپ کے اعتبار سے کبھی یہ تاریخ 4 نومبر کو پڑتی ہے اور کبھی 3 نومبر کو، اتفاق سے اس سال 3 نومبر کو ہے، لیکن 13 آبان ایرانی مہینے کے حساب سے۔ 1964 4 نومبر کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو امریکی امام پر شاہی حکومت نے ملک سے جلا وطن کیا، اور 4 نومبر 1978 کو شاہی حکومت کے کارندوں نے ایران کے اسکولی طلبہ کا قتل عام کیا، اور پھر 4 نومبر 1979 کو ایران کے انقلابی طلبہ نے تہران میں امریکہ کے سفارت خانے پر، جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، قبضہ کیا، اور یہ واقعہ اتنا عظیم واقعہ تھا کہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے انقلاب دوم کا نام دیا۔ الغرض یہ کہ گزشتہ 60 برس سے، یعنی جب سے ایران میں مصدق کی حکومت کا امریکہ کی ایما پر خاتمہ ہوا اور ان کا تختہ الٹا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک ایرانی عوام اور امریکی حکومت کے درمیان جنگ، مارکہ اور کشمکش جاری ہے، اور جو غیر جانبدار مبصرین ہیں ان کا بجا طور پر یہی کہنا ہے کہ اس 60 سال کے عرصے میں امریکہ نے جتنی بھی کوشش کی، جتنی بھی سازش کی، بالآخر کامیابی ایرانی عوام کو ہی مختلف صورت میں نصیب ہوئی۔ اس وقت چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب علی جعفر زیدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
علی جعفر زیدی صاحب، جب ہم گزشتہ 60 برس کے اس مارکے پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو کامیابی کس کی نظر آتی ہے؟ میری باتوں پر نہ جائیں۔
آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ فتح عوام کی ہے اور یہ جدوجہد عوام کی ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، اور فتح، آخری فتح عوام کی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا 1953 کے بعد سے لے کر، یعنی 1953 میں جب مصدق کا تختہ الٹا گیا، سی آئی اے نے تختہ الٹا، تو اس کے بعد شاہ کی جو ظلم و جبر اور خوف کی کا دور ہے، اس میں عوام نے اپنی مزاحمت کو نہیں چھوڑا، اور مسلسل وہ مزاحمت جاری رہی، گو کہ سپریشن بہت تھا، اور لوگوں پر وہاں پر جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس کا عالم یہ تھا کہ ہر تیسرا آدمی ایجنسی کا سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اٹھا لیے جاتے تھے، اور بے شمار مظالم ہوئے اس کے باوجود۔ اور اس کا یعنی امریکہ کی پشت پناہی پر شاہ یہ کام کر رہا تھا، تو اس کا ایک پازیٹو رزلٹ یہ نکلا کچھ سالوں بعد کہ عوام میں امریکہ کے خلاف شدید نفرت بڑھ گئی، اور جب اسلامی انقلاب کی سٹیج آئی تو امریکہ کے خلاف جو نفرت کی شدت تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ شاہ نے امریکہ کی خدمت تو کی اس علاقے میں، شاہ امریکی پٹھو اور امریکی مفادات کا محافظ تھا، لیکن اپنے عمل سے عوام میں جو شدید رد عمل امریکہ کے خلاف ہوا وہ اسی کے ایکشنز اور جبر کے نتیجے میں تھا۔
بہت شکریہ۔
عوام کی جدوجہد کو روکنا جبر سے لاٹھی گولی کی سرکار کے ذریعے، قتل کے ذریعے، زندان کے ذریعے، پھانسیاں دے کر، آپ اس جدوجہد کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جدوجہد ڈیپ ڈاؤن سوسائٹی میں چلی جاتی ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا پھر انقلاب کی شکل میں سامنے آتا ہے، جو ہم نے دیکھا 1979 میں جو انقلاب ہے وہ عوام کا انقلاب تھا، اور بہت عظیم انقلاب تھا
جی،
اور وہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ آج تک امریکہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود उस इनकलाब को, उस जज्बाए हुर्रियत को, अवाम के उस इस्तकलाल और अज़्म को अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद सेंक्शंस लगाई गई और न जाने क्या क्या कुछ हरबे इस्तेमाल किए गए, उसके बावजूद अवाम का, ईरानी अवाम का हौसला पस्त नहीं हुआ। और जब भी सेंक्शन लगी वो एक नए अज़्म और नए जज्बे के साथ निकले और ज़्यादा ताकतवर होकर निकले।
जी जैदी साहब, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में, मैं फिर हाजिर हूँगा। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं सरकर्दा तजिया निगार और सीनियर साफ़ी मोहतरमा फौजिया शाही साहबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
फौजिया शाही साहबा, इन दिनों यहाँ इस्लामी जमहूरिया ईरान में आलमी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जिसकी सरकर्दगी आजकल अमेरिका के हाथ में है, उसके ख़िलाफ़ कौमी दिन मनाया जा रहा है, जद्दोजहद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। और मैंने जैसे कि अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि 3 या 4 नवंबर ईरानी कैलेंडर के हिसाब से 13 आबान कहा जाता है उसको, कभी लीव के एतबार से 3 नवंबर या कभी 4 नवंबर। बहरहाल, तो इन दिनों यहाँ पर कौमी दिन मनाया जा रहा है आलमी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का। मुबसरीन और आलमी मुबसरीन यही कहते हैं, जैसा कि अभी आपने जैदी साहब की भी गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई, कि ईरान में 1979 में कामयाब होने वाला इनकलाब सिर्फ़ ईरान में अमेरिका की शिकस्त नहीं बल्कि इलाकाई सतह पर और आलमी सतह पर भी उसकी हैबत का बुत पाश पाश हुआ। और यही वजह है कि उस वक्त से लेकर आज तक ईरान मुखालिफ उसकी सरगर्मियाँ और तेज़ हो गई। आप क्या कहना चाहेंगी अपने एतबार से?
जी, सबसे पहले तो मैं आपकी वसात से जो भी साम्राज्य के ख़िलाफ़ नबर्दव आजमा क़ुतें हैं, ख़ासतौर पे ईरान के जो शहरी हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाह रही हूँ, चाहूँगी कि एक तवील जदोजहद उनकी है और इस सिलसिले में जिस तरह वो सस्टेन कर रहे हैं, अमेरिका जैसी एक वो मुज़ोर घोड़ा जो है, जो ताकत है, उसको जिस तरह रजिस्ट कर रहे हैं, ये यकीनन तमाम दूसरे ममालिक जो हैं और ख़ासतौर पे वो कुवतें जो साम्राज्य के ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं या वो किसी ना किसी तरह अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, उनके लिए एक बायस हौसला भी है। जहाँ तक आपने बात की है ईरान के हवाले से, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर ईरान का तारीखी हम पस मंज़र देखते हैं, जिस तरह अभी बात कर रहे थे एक बहुत सीनियर तजिया निगार जो गालबन बरतानिया से थे,
जी
जिस तरह उन्होंने ये बात की कि ईरान में जो 1979 का इनकलाब जो है उससे हम पहले देखते हैं, तो ईरान कौम हमें वो एक बिल्कुल मग़रब की जानिब हमें दिखाई देती है, जिसकी अपनी जो तहजीब है, ईरान एक बहुत पुरानी तहजीब है, उसका अपनी एक पहचान है, उसकी अपना एक रवायात है, लेकिन वो एक अपनी रवायात से हटी हुई एक हमें वो तहजीब दिखाई देती थी, और जिसको मुकम्मल तौर पे अगर ये कहा जाए तो वो एक एजेंडा जो अमरीकी एजेंडा था वो उस पर कारबंद थी। और उसके बाद जो है उसमें आवाम की जो ख्वाहिशात हैं, जो आवाम के अपनी जो जज्बात हैं, वो दिखाई नहीं देते थे, एक शहनशाहियत थी, और उसमें जब शहनशाहियत होती है तो उसमें आवाम की जो उसकी जो तकाजे होते हैं, उसकी ज़रूरियात जो होती हैं, जो आवाम की जो ताकत जिस तरह बात की गई वो वहाँ दिखाई नहीं देती। 1979 के बाद एक बिल्कुल अलग किस्म की नई तारीख है, वो सिर्फ उसको मैं ईरान तक नहीं रखूँगी, ये वो तारीख है कि जिसको हम ये देखते हैं कि वही जिस तरह आपने बात की है और जिस तरह मैं ये समझती हूँ कि ये साम्राज्य से टकराने की एक कुव्वत है, और कुव्वत कहाँ से आई, वो यकीनन वहाँ की आवाम से आई। और हम ये देखते हैं, अगर हम मेरे ख्याल में 1995 से तकरीबन अभी तक जो है वो एक सेंक्शंस का एक तवील जो है सिलसिला जारी है, इन सेंक्शंस में कभी कभी थोड़ी सी नरमी आती है, लेकिन आजकल फिर जो है वो शदीद किस्म की जो है पाबंदियाँ ईरान के ख़िलाफ़ लगाई गई हैं, लेकिन अवाम जो ईरान जो है अभी तक किस तरह रेजिस्ट कर रहे हैं, ये वो सवाल है जो हमें क्यूबा में भी दिखाई देता है, हमें वेंजुएला में भी दिखाई देता है और ईरान में भी दिखाई देता है, ये वही इस सवाल है जिस पे तमाम इन ममालिक को, ख़ासतौर पे मैं अक्सर इस्लामी ममालिक की बात करती हूँ, कि उनको इन चीज़ों पे ज़रूर अपनी जो ताकत है, अपनी जो मुस्लिम उम्मा की ताकत है, उसका उन्हें जायज़ा लेना पड़ेगा। और अगर ईरान अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, 79 से लेके अभी तक जिस तरह के हालात ईरान के साथ रहे हैं, यकीनन वो ज़ाहिर इराक ईरान जंग के हवाले से चाहे बात करें, चाहे सेंक्शंस के हवाले से बात करें, लेकिन वो अपनी तरक्की का जो उसने एक सस्टेन की है उस पे चलता चला गया, और अगर उसमें कई मुश्किलात आई हैं तो अवाम को उसने किस तरह साथ लिया, ये भी एक बहुत बड़ी लोगों के लिए मिसाल हो सकती है, मॉडल हो सकता है, उसको लेना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं साम्राज्य के ख़िलाफ़ कुव्वतें इकट्ठी करने की, तो मैं ये समझती हूँ कि अभी ख़ास तौर पे अगर हम ये 2012 की बात करें तो ईरान ने दो बहुत अहम इकदाम किए, सबसे अहम इकदाम मैं समझती हूँ जो गैर जानबदाराना वहाँ तहरीक का इजलास किया।
जी
गैर जानबदाराना तहरीक जो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है एक तवील अरसे से जो है तकरीबन उसके कोई वजूद नहीं रहा था, बिल्कुल डेड हो चुका था, लेकिन उसको जिस तरह ज़िंदगी बख्शी है ये एक फिर ये उन साम्राज्यी कुवतों के लिए ख़ासतौर पर अमरीका के लिए इतना बड़ा चैलेंज उसने अमरीका ने उस वक्त अमरीका को दिया गया है और ईरान ने उस वक्त दिया है जबकि वो एक शदीद किस्म के तनाव से दो चार है, उसके ऊपर जो एटॉमिक पावर के हवाले से शदीद किस्म का दबाव है, उसके इसराइल की जानिब से वाजे तौर पे थ्रेट्स दिखाई देती हैं जो हम गफ़ में देखते हैं, पर्शियन गफ़ में देखें या उसमें हुर्मज़ में देखते हैं, तो वहाँ भी ऐसी कुवतें मौजूद हैं जो ईरान के लिए ज़ाहिर है कि बराह रास्त किसी ना किसी तरह एक थ्रेट की सबब बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा स्टैंड लेना ये उन कुवतों के लिए जो समझती ये है कि अमेरिका इस वक्त इतनी बड़ी ताकत है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें ज़ाती तौर पे मैं समझती हूँ कि इस वक्त जितनी ज़रूरत है अमेरिका के जिस तरह की मूज़ोर उसकी कार्रवाइयाँ दिखाई देती हैं और बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है कि इराक पे अमेरिका की जानिब से एक शदीद किस्म का हमला हुआ और उसमें जो ईरान का रवैया रहा वो भी हमें एक खुला
जी
पैगाम
बहुत
देता
शुक्रिया,
है
मैं फिर हाजिर
कि
हूँ।
शदीद इख्तलाफात के बावजूद ईरान ने इराक को जिस तरह सपोर्ट किया। लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत तशना दिखाई देती है, मसलन ये वाजे हो चुका है कि इराक पे जो हमला किया गया था उसमें एक मुकम्मल तौर पे गलत करारदाद के ज़रिए उसको निशाना बनाया गया और अभी तक जिसने निशाना बनाया इराक को तबाह कर दिया उस पर कोई जो है ना तो सिर्फ उस पर
मोहतरमा,
कोई
मैं फिर
इल्ज़ाम
हाजिर हूँगा आपकी
लगाया
खिदमत
गया
में,
है ना
नाजिश
उसको
आपकी।
कोई
जी
जिम्मेदारी।
मैं फिर हाजिर हूँगा, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सरकर्दा और सीनियर तज़ निगार और सहाफ़ी आगा मसूद हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
आगा साहब, आज का दिन ईरान के कैलेंडर के हिसाब से 13 आबान है और आपको यकीनन याद होगा कि 4 नवंबर 1979 को ईरान के इनकलाबी तलबा ने अमरीकी सफारत खाने पर जो जासूसी के अड्डे में तब्दील हो चुका था कब्ज़ा कर लिया था और जासूसों को गिरफ्तार कर लिया तो उन्हें यरगमाल बनाए रखा था एक अरसे तक। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की और आपको वाकई तबस भी याद होगा कि उसने अपने हेलीकॉप्टर तक ईरान में उतार दिया था और फिर क्या हुआ कि रेत के तूफान में वो सब खुद ही जो है वो गोया एक तारीख का दूसरा वाक़ा दोहराया गया अबाबील का। अलकिस्सा ये कि उस दिन के बाद से आज तक ईरान के अवाम इस तारीख को साम्राज्य के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद का कौमी दिन मनाते हैं और साम्राज्य से अपनी नफरत व बेजारी का ऐलान करते हैं। ये जो ईरान में कौमी दिन मनाया जा रहा है इसका असर आप ईरान से बाहर भी कुछ देख रहे हैं?
देखिए ये बहुत बड़ा दिन है और हमें इस दिन से
जी
जो था ईरान के बहादुर अवाम तलबा और गार्ड से बाकायदा उनको यरगमाल बनाया और एक मैसेज दिए, वो क्योंकि वो जासूसी का अड्डा था और वो इस्लामी इंकलाब को नाकाम कराना चाहते थे और बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी निकले कि जिसमें उनकी पूरी एक स्ट्रेटेजी थी कि किस तरीके से वो इस्लामी इंकलाब को और उनके बड़े बड़े अजीम रहनुमाओं को जो है वो सफा हस्ती से मिटाना चाहते थे। बात असल ये है कि ये तो एक तारीख का हिस्सा है जिसमें बड़ा वक्त लगेगा बताने के लिए, लेकिन मैंने इस पर उनको बड़ा गहरा मुताला किया है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कम अज कम ये कि जहाँ जहाँ भी लोग बेदार हैं और समझते हैं कि उनके हकूक की पामाली हो रही है।
जी बजाय ऐसा लगता है कि हमारा रबता टेलीफोनी मुनक़ा हो गया है, मैं अब जैदी साहब से ही सवाल करना चाहूँगा। अलबत्त तकरार मकररा से बचते हुए सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा कि ईरान की जो साम्राज्य मुखालिफ जिद्दोजहद है ईरान के अवाम की, उसको ईरान से बाहर उसके असरात को आप कितना देख रहे हैं?
जी उनके ये असरात तो पूरी दुनिया में फैले और ख़ास तौर पे जब सोवियत यूनियन को तोड़ा गया और हंटिंगटन का फ़लसफ़ा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आया और मुसलमान ममालिक पर और मुसलमान अवाम पर एक तरह की जंग मुसल्लत की गई और जो उनकी अमेरिका की क्रिएटेड बोगीज़ थी अलकायदा और तालिबान किस्म की चीज़ें, उनके ज़रिए न सिर्फ मुस्लिम ममालिक के अवाम को डराया धमकाया गया बल्कि अमेरिका के अपने अंदर जो अवाम हैं उनको भी खौफ ज़दा किया गया, आज तक किया जा रहा है। इस सारी फिजा में होना ये चाहिए था कि दुनिया भर के अवाम अमेरिका के हक में हो जाते और दहशतगर्दों को तस्लीम कर लेते कि इनका जबर जुल्म और अमेरिकी साम्राज्य और सऊदी अरब की पुश्तपनाही से जो भी बिलखसूस अरब ममालिक में और मुस्लिम ममालिक में जो हो रहा है उसको वो कबूल कर लेते। ऐसा नहीं हुआ। और अब आप देखें कि अरब स्प्रिंग, जहाँ पर अमेरिका ने कोशिश की कि वहाँ पर रिजीम चेंज हो, तो रिजीम चेंज हुई हैं लेकिन रिजीम वो नहीं आई जो अमेरिका जिस तरह की रिजीम चाहता था। कुछ जगह पर प्लांटेड मूवमेंट्स भी बिल्ड की गई और शाम में जिस तरह से अभी तक टर्की में ट्रेनिंग दी जाती है, सऊदी अरब की फाइनेंस के फाइनेंसिस उसमें शामिल हैं, असला शामिल है, लेकिन शाम के जो अवाम हैं और इसी तरह दुनिया भर के और अरब ममालिक के अवाम, वो हर आने वाले दिन में अमेरिका के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और नफ़रत में इजाफा होता है। और हमने देखा कि 1979 के बाद अरब वर्ल्ड में ख़ास तौर से जो रेसिस्टेंस बिल्ट हुई अमेरिकी साम्राज्य के ख़िलाफ़ और इज़राइल के तसल्लुत के ख़िलाफ़, उसमें ये कभी इज़राइल सोच नहीं सकता था कि उसके यहाँ भी मिज़ाइल आकर गिरेंगे, और वो तो इस तरह की ताकत बना हुआ था कि वहाँ पर कोई उसको छू नहीं सकता। तो ये 1979 के इनकलाब की का दिया हुआ जज्बा और हौसला है, बिलखसूस मुस्लिम ममालिक में जहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़, साम्राज्य के ख़िलाफ़, उसके तसल्लुत के ख़िलाफ़ और अपने हकूक़ के हक़ में, जो कि माशी और सियासी हकूक़ हैं और माशी आज़ादी के हकूक़ हैं, अपनी ख़ुद मुख्तारी के हकूक़ हैं, उसके लिए अवाम में न सिर्फ शऊर आया बल्कि बेशुमार हौसला आया। और जो ईरान का इनकलाब है वो उनके लिए एक मशले राह साबित हुआ, और ये वो तारा है मेरा ख़्याल है जो जहाँ जहाँ अभी तक अंधेरा है वहाँ ये जो सितारा है जो 1979 के इनकलाब में नमूदार हुआ, वो उन तमाम जद्दोजहद करने वाली अकवाम को रास्ता भी दिखाता रहेगा और एक कुतब सितारे की हैसियत इख्तियार
बहुत कर शुक्रिया
चुका है। लोग उससे अपनी राह हिदायत हासिल करते रहेंगे।
जी बहुत शुक्रिया आपका। मतमा फौजिया शाह साहब, अभी जदी साहब भी ये फरमा रहे थे कि अमेरिका के तई नफरतें बढ़ती जा रही हैं, और अभी दो रोज़ कबल इस्लामी इनकलाब के हमारे जो कायद हैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा ख़ामेनी साहब, उन्होंने भी यही फरमाया था अपने खिताब में कि इस वक्त दुनिया की सबसे नफरत ज़्यादा हुकूमत या दुनिया में जिस हुकूमत से सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है वो अमेरिका है। ऐसा क्यों?
देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर ख़ुद भी इस पर बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि अमेरिका का अगर हम दूसरी जंग अजीम के बाद का किरदार देखते हैं तो कहीं भी हिरोशिमा नागासाकी के बाद आप देखिए कि किसी भी इलाके में अमेरिका ने अमन की बात नहीं की, और जहां भी गया उसने उसमें तबाही मचाई है। अभी जब हम बात कर रहे हैं 79 का ईरानी इनकलाब के बारे में, तो ये एक हमें मद्देनज़र बात रखनी चाहिए कि इस खित्ते में ये बिल्कुल वही वक्त था जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका यहाँ पाकिस्तान में पहुँच के, अफ़गानिस्तान में पहुँच के एक ऐसी जंग लड़ रहा था जो यकीनन इस खित्ते के लिए आज तक जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी बनी हुई है कि क्या वो जंग दुरुस्त थी या नहीं थी, और उसका क्या सोवियत यूनियन के खात्मे से कोई ताल्लुक़ था या इस खित्ते में बदअमनी पैदा करनी। ये वो वक्त था जब ये आप बात अभी कर रहे हैं, ये बहुत अहम सूरत हाल है जिसका जायज़ा ज़रूर लिया जाना चाहिए। ईरान ने उस वक्त जो रेजिस्टेंस दी, अगर ईरान में उस वक्त वही हुकूमत होती जो उससे इस्लामी इनकलाब से कबल थी, तो इस खित्ते में सूरत हाल जो है वो मज़ीद जो है वो ख़राब हो चुकी होती। और इसमें मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका को यहाँ मुकम्मल तौर पे अपने अड्डे बनाने का वो मौका मिल जाता और वो ईरान की सरजमीन को भी इस्तेमाल करता और ईरान की सरजमीन ज़ाहिर है कि रूस के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करता। पाकिस्तान में तो वो पहले ही जिस तरह अपना एक तवील अरसे से किसी ना किसी तरह अपनी मौजूदगी को बरकरार रखे हुए हैं, अफ़गानिस्तान में रखे हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त सबसे बड़ी इलाके को अगर रेजिस्टेंस मिली तो वो इस्लामी इनकलाब की वजह से मिली, और अमेरिका जो उसके जो अजाइम थे उस तरह कामयाब नहीं हुआ और बिलाखिर उसको 91 में या 90 में हम देखते हैं कि उसको जाना पड़ा। वो अलग बात है कि उसके बाद उसने किस तरह उसको छोड़ा, उसके असरात क्या हुए, लेकिन ये है कि अगर वहाँ रेजिस्टेंस ना होती तो अमेरिका ने नहीं जाना। दूसरी जानिब जो आपने बहुत अहम बात की है, अमेरिका इस वक्त अगर हम देखें जब यूनिपोलर वर्ल्ड की बात आई 1990-91 में, तो उसने बिल्कुल एक आलमी थानेदार का रूप धारते हुए ये फैसला कर लिया कि वो हर जगह मनमानी करेगा। लेकिन यही छोटे छोटे ममालिक थे, चाहे ईरान को हम ये समझते हैं कि अमेरिका की जो एक ताकत है, चाहे उसकी नेटो फोर्सेस उसके साथ होती हैं, इसराइल की ताकत उसके साथ है, या और बहुत सी ताकतें, इवन इस्लामी मुल्कों की ताकतें भी जो हैं हम बिल्कुल उसको देखते हैं कि जो ईरान बिल्कुल अमेरिका के साथ होती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की जो एक इब्तदा की गई और बताया गया कि रेजिस्टेंस क्या होती है वो यकीनन इस्लामी इनकलाब ही ने दी। अब इस्लामी इनकलाब जो ईरान का था उसमें हो सकता है किसी को इख्तलाफ भी हो, लेकिन जिस तरह उसमें नौजवानों ने हिस्सा लिया, जो अभी आप जिक्र आप कर रहे थे कि 44 जो माह तक एक जो नौजवान जो हैं वो सफारतकार जो थे, जो सो कॉल्ड सफारतकार थे, मेरे ख्याल में 52 या 53 के करीब वो सफारतकार थे जिनको उसने उन्होंने हॉस्टल बनाया था, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो एक कुव्वत थी कि जिन्होंने ये समझा कि वो एक दुरुस्त राह पे चल रहे हैं और उन्होंने अपना आप मनवाने के लिए, और उसमें उस वक्त जो सूरत हाल थी ख़ासतौर पे ईरान का बहुत बड़ी जो पैसा था वो अमेरिका के बैंकों में था, और मेरा ख्याल है जो मैं शायद थोड़ा सा इसमें गलत ना कह रही हूँ, तो उसमें जब वो हॉस्टल बनाया गया तो ईरान की खासी जो वसाइल है उसको वापस भी मिले। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि ये वो ताकतवर रेजिस्टेंस थी जो नौजवानों की जानिब से, जो आवाम की जानिब से इन्होंने समझ लिया था कि ये हमारी सरजमीन है, इसको हमने अपने ताकत से अपनी कुव्वत से जो है उसको बरकरार ही नहीं रखना बल्कि उसको आलमी सतह पर मनवाना है। और बिलाशुबा अगर ये कहा जाए कि ईरान ने अपने वसाइल पे एतमाद करते हुए, अपने अवाम पे एतमाद करते हुए, अवाम की ताकत पे एतमाद करते हुए अपने आप को मनवाया, इस वक्त कोई भी ऐसा मुल्क यकीनन नहीं हो सकता जो 95 से लेके ये तकरीबन 2 दहाइयों के करीब बन जाता है जो सेंक्शन से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने वसाइल पे और ख़ासतौर पे ईरान और अमेरिका की तजारत बहुत ज़्यादा थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म की गई, सेंक्शंस की जो नज़र किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कुव्वत को बरकरार रखा और आज ईरान जो है मुकम्मल तौर पे अपनी हैसियत जो है वो मनवाए हुए हैं। उसके लिए थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम ये नहीं समझते कि ईरान कोई बहुत सहूलत में है, बहुत आसानी में है। मैं बिल्कुल उस पर अमरीका की जानिब से जो बार बार उसको धमकियाँ दी जाती हैं उससे भी बिल्कुल आगाह है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये इस वक्त दुनिया में 2-3 हम मुल्क देखते हैं जिसमें ईरान सरे फहरिस्त है, जो इस साम्राज्य को जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, अपनी मनमानी करना चाहता है, उसको एक दीवार की तरह उसके सामने खड़ा है। और ये और फिर उसने ईरान की हमें एक बिल्कुल हमें एतराफ़ है कि जहाँ भी साम्राज्य के खिलाफ अगर किसी को कुचलने की कोशिश की गई साम्राज्य की जानिब से तो उसने उस कुव्वत का साथ दिया। कास्त्रो का साथ जब देती है, वेंजुएला के शावेज़ का जब ईरान की जानिब से साथ की बात की जाती है, शाम के बारे में साथ देने की बात की जाती है, लीबिया के बारे में, और लीबिया के हवाले से तो ज़ाहिर है कि अमरीका ने और ईरान ने और लीबिया के दोनों के बारे में ख़ास तौर पे एक कानून भी बनाया दोनों पे पाबंदियाँ लगाने का। तो कहने से मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ जब ईरान एक खड़ा हो जाता है, उसका मुकाबला करता है, तो ये एक रेजिस्टेंस वो है जो लोगों को, दुनिया को, दीगर ममालिक को हौसला देती है। मैं ये समझती हूँ कि जो इसके असरात बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे वो उस तरह तो नहीं दिखाई देते, उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह दिखाई देती है कि अभी तक जो इस्लामी ममालिक की हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पे बाकी ममालिक को छोड़ दिए, लेकिन सऊदी अरब की जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पे अमेरिका के इशारों पे है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और इसी वजह से आपके बहुत से इस्लामी ममालिक में बदमनी भी दिखाई देती है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में जब तालिबान
मैं इस तरफ फिर आऊँगा मैं इस तरफ फिर आऊँगा
इस पाकिस्तानी तालिबान की बात आती है
जी, मैं फिर आऊँगा इस तरफ। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा फौजिया शाह साहिबा। इस वक्त एक बार फिर चलते हैं कराची, जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ दानिशवर और तज़ज़िया निगार जनाब प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम।
शकील सिद्दीकी साहब, इन दिनों यहाँ ईरान में साम्राज्य मुखालिफ जदोजहद का कौमी दिन मनाया जा रहा है, यानी ये अयाम वो हैं जब 1979 में ईरान में या तेहरान में अमेरिका के जासूसी के अड्डे पर, जो इसे नाम नहाद सफारतखाना कहा जाता था, उस पर ईरान के इनकलाबी तलबा ने कब्ज़ा किया था। ज़ाहिर उसकी सरगर्मियाँ ईरान के अवाम के ख़िलाफ़ थीं, ईरान के इनकलाब के ख़िलाफ़ थीं, ईरान के निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ थीं, जो इस्लामी निज़ाम हुकूमत है। तो ईरान के इनकलाबी तलबा ने बार बार मना करने के बावजूद, जब उनकी जासूसी सरगर्मियाँ नहीं रुकी, उनकी साजिशें नहीं रुकीं, तो उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया और जासूसों को गिरफ़्तार कर लिया, बहुत सारी दस्तावेजात, एक तवील दास्तान। उस दिन के बाद से लेकर आज तक इन दिनों यहाँ पर ईरान में साम्राज्य के ख़िलाफ़ जदोजहद का कौमी दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका इस वक्त आलमी दरोगा या आलमी थानेदार है, इसको हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि वो अमेरिका जो अपने को आलमी क़यादत का दावेदार ठहराता है, उसकी तो नब्ज़ या उसकी तो लगाम सहयूनी लाबी में, जिस शख्स की लगाम सहयूनी लाबी के हाथ में, वो अपने को कैसे आलमी क़यादत का दावेदार कह सकता है?
ये असल में एक मुकम्मल सूरी है जिसको जॉर्ज बुश सीनियर ने सोवियत यूनियन के क्रैश के बाद जो है वो दुनिया के सामने पेश किया था, और उसका ख्याल ये था कि अब सोवियत यूनियन के पास यूनी पावर की हैसियत से उसकी एक ऐसा मुकाम बन गया है कि वो दुनिया को अपने हाथ में ले लेगा और जिस तरह से चाहेगा कठपुतली की तरह से नचाएगा। तो असल जो फिक्र है वो तो ये है कि एक नजरिए के तहत, खुद साख्ता नजरिए के तहत अमेरिका ने अपने आप को दुनिया की वाहिद सुपर पावर के तौर पर पेश किया, और फिर उसके बाद से जो उसका मुकम्मल तर्ज अमल चल रहा है, उस तर्ज अमल से ये नतीजा अख्ज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा कि फिर हकीकत अमेरिका दुनिया को और दुनिया के इंसानों को गुलाम बनाना चाहता है, बिलखसूस मुसलमानों को और मुसलमानों के वसाइल पर कब्जा करके अपनी हाकमियत कायम करना चाहता है। लेकिन ये भी एक अमर वाक्य है कि जब से सोवियत यूनियन का एक जो उसका इतिहास था वो खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से दुनिया में पेनिट्रेट करना शुरू किया, उसी रफ्तार से और उसी शिद्दत से अमेरिका के खिलाफ जो है वो मुज़ाहमत जो है वो भी जोर पकड़ गई, और मुज़ाहमत की एक अलामत के तौर पर ईरान भी सामने आया, और ईरान ने जमकर और डटकर जो है वो अमेरिका की मुखालफत की। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ईरान का जो जोन, ईरान के हवाले से अमेरिका का जो जोन था वो जोन टूटा है, और फिर यही नहीं बल्कि दुनिया में इस वक्त जहाँ भी अमेरिका मुसलमानों को बिलखसूस और इंसानों को गुलाम बनाने की जिस मुहिम में सरगर्दा है, वहां पर उसी शिद्दत के साथ मुखालफत भी हो रही है, इराक में, अफगानिस्तान में, और फिर अभी देखिए अरब दुनिया के अंदर खासतौर पर जो है वो मिस्र के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें तो अमेरिका की उस साख्ता साम्राज्यियत का और थानेदारी का जोन तोड़ दिया है, और अब अमेरिका में मैं समझता हूँ कि फिर हकीकत वो कुव्वत ताकत नहीं है कि वो किसी और मुल्क के वसाइल पर कब्जा करके जंग करे और उसको गुलाम बनाने की कोशिश करे। तो ये अमेरिका का खुद साख्ता नजरिया था जो अमेरिका के अंदर ही गर्क हो चुका है। अब अमेरिका इस बात की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकता, उसकी साजिशें अलबत्ता जारी रहेंगी, वो रेशा दवानियां भी करता रहेगा, और उससे जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में, क्योंकि वसाइल बहरहाल उसके पास मौजूद है, उन वसाइल की मौजूदगी में उसको ऐसे एजेंट भी जो है और उसके ऐसे हाशिए बाजार भी उसे दस्तियाब हैं जो उसके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। लेकिन बहसियत मजमू तमाम इंसान दुनिया के और बिलखसूस मुसलमान अमरीका की इस आलमी इजारादारी के तस्वूर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और न ही जो है वो एक फितरी तौर पे आजाद कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई आजाद नेशन हो, वो किसी की हाकिमियत को कबूल नहीं करेगी।
बहुत शुक्रिया आपका। जैदी साहब, अभी आपने अगर ओबामा और मिट रामनी का जो आखिरी जो ताज़ा तरीन मुनाजरा या मुबाहिसा था उसको मुलाहिज़ा किया होगा। कभी कभी कहा जाता है कि अदु शबद सबब खैर गैर खुदा का हाथ, कभी कभी दुश्मन भी जो है वो बाईस खैर और बाईस शोहरत भी बन जाता है। आप देखें कि दोनों उम्मीदवारों ने अपना सारा जोर इस बात पर सर्व किया है कि ये साबित करें कि ईरान का कट्टर मुखालिफ कौन है। ओबामा ये साबित करने पे तुले हुए थे कि हम ज़्यादा ईरान के कट्टर दुश्मन हैं, और रामनी ये साबित करने पे तुले हुए थे कि हम, जाहिर है इसका मकसद था सहयोगियों को खुश करना। तो आप देखें कि जो भी ईरान के ख़िलाफ़ या यूं कहा जाए कि जो भी अमेरिका में सदारती उम्मीदवार आता है तो सबसे पहले ईरान को ही टारगेट बनाता है, ईरान को ही निशाना बनाता है। तो गुज़िश्ता 33 बरस से कम अज़ कम, और 60 बरस की जो कहानी है उसको हम अलग कर दें, लेकिन 33 बरस में अगर हम देखें तो जितने भी अमरीकी सुदूर आए हैं सब ने ईरान को निशाना बनाया, हदफ बनाया, मुख्तलिफ तरीक़े से और मुख्तलिफ साजिशों से। तो अब तक जो नहीं बना सके, ईरान को ज़ेर नहीं कर सके, तो इसका नतीजा क्या निकलता है और इससे क्या बात समझ में आती है?
जी, ये दोनों ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दोनों ने ईरान को अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया है, और दोनों इस कोशिश में हैं कि ये साबित कर सकें कि वो एक दूसरे से बढ़कर ईरान के ख़िलाफ़ हैं। वो इसलिए है कि ईरान एक मिडल ईस्ट में एक ताकत के तौर पे इमर्ज हो चुका है। जुल्म और तशद्दुद और सैंक्शंस और सऊदी अरब जैसे, कतर जैसे हुक्मरानों की मुखालफत के बावजूद ये एक हकीकत है कि ईरान एक ताकत है, और जिस ये ममालिक जो ये बहरीन, कतर और सऊदी अरब जैसे हुक्मरान अगर इस बात को जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतनी जल्दी मुसलमानों के मसाइल इस खित्ते में आसान हो जाएंगे और उनको हल करना आसान हो जाएगा। तो ईरान एक ताकत के तौर पे इमर्ज हो चुका, और उसके पीछे ना सिर्फ़ ये कि अवाम की क़ियादत है बल्कि रहबरी और रहनुमाई एक अहम जुज़ है किसी भी इनकलाब को बरकरार रखने के लिए। अगर हुक्मरानों का अवाम के साथ राबता ना हो, और अवाम का हुक्मरानों के साथ राबता ना हो, तो वही सूरत होती है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है। अवाम पाकिस्तान के अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, हुक्मरान अमेरिका के दुम छल्ला हैं, सऊदी अरब के अवाम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, उनका हीरो नसरल्ला है, उनका हीरो सऊद फैमिली नहीं है। तो ये इस तरह के ममालिक में जहाँ अवाम और वहाँ के हुक्मरानों के दरमियान एक खलीज है बहुत बड़ी, उन ममालिक को छोड़कर बाकी सब जगह ईरान को एक हकीकत के तौर पे तस्लीम किया जा रहा है। वहाँ की क़ियादत और अवाम में एक मज़बूत रिश्ता है, और ये वो ताकत है जिसकी वजह से पूरी कौम एक ताकतवर कौम के तौर पर उन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रही है और एक ताकत के तौर पर इमर्ज हुई है, इतनी बड़ी कि अमेरिका के दोनों सदर इस वक्त ईरान को अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाए हुए हैं, और उसके पीछे ऑब्वियसली एक ज़ायनिस्ट लॉबी भी है। लेकिन ईरान ही क्यों, इसलिए कि मिडल ईस्ट में जो कोंडालिसा राइस ने एक नक्शा दिया था, और उसने बहुत बड़ा एक आर्टिकल भी लिखा कि हम, और ऐलान भी किया कि हम वी आर गोइंग टू चेंज दी मैप ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट, और उन्होंने उसकी कोशिश भी पूरी की, लेकिन वो नतीजे आज तक हासिल नहीं हो सके जो वो चाहते थे। और उसमें यकीनन ईरान, ईरान के अवाम, ईरान के हुक्मरानों का एक बहुत अहम रोल है, और पूरे मिडल ईस्ट में ईरान और ईरान के अवाम की जद्दोजहद का, साम्राज्य के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का बहुत दूर तक उसका असर है। मैं फौजिया साहिबा के इस फिक्रे से मुत्तफिक नहीं हूँ कि इसके असरात उस तरह नहीं हो पाए जैसे होने चाहिए थे, इसलिए कि अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान में इसके असरात हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के इनकलाब के असरात नहीं पहुंच पाए, नहीं फैल सके। इतने फैल सके हैं, इतने उसकी एक डिटर्मिनेशन है कि ईरान के सदूर तक को जो इलेक्शन के कैंडिडेसी के इलेक्शन कैंपेन में उनको ईरान को हदफ बनाना पड़ रहा है। और ये भी एक हकीकत है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के अवाम अमरीका के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के अवाम में यकीनन ईरान के इनकलाब का असर है। उन्होंने
बहुत शुक्रिया जैदी साहब, बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा, बहुत शुक्रिया आपका। फौजिया शाही साहिबा, आप देखें कि जब मिट रॉमनी और ओबामा दोनों ईरान से अपनी दुश्मनी साबित करने पर तुले हों तो क्या ये ईरान के इस्तेहकाम और ईरान की एक उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आने की दलील नहीं है? और दूसरे लफ्ज़ों में क्या ये गुज़िश्ता 33 वर्षों में अमरीका के ख़िलाफ़ ईरान की फतह नहीं है?
बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जिस तरह अभी बात की जा रही थी, अमेरिका के इलेक्शंस का जो ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि ये एक चीज़ हमें बिल्कुल मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसराइल हो या जो यहूदी लॉबी है, अमेरिका के इंतखाबात पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और अमेरिका के हमेशा जो सदूर रहे हैं उन्होंने उस लॉबी को खुश करने की कोशिश की है, कामयाबी का समझा है। लेकिन ईरान का जहाँ तक उसने अपनी एक जो हैसियत मनवाई है, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ ईरान को जाता है। और ज़ाहिर है कि जब ये बात की जाती है कि दोनों उम्मीदवार जब आपस में बैठ के और ये कोशिश करते हैं कि आवाम को ये मैसेज दे सकें कि वो ईरान के ज़्यादा से ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, उसके एटमी प्रोग्राम के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रखते हैं, या उसके हवाले से जब वो डिस्कस किया जाता है, तो ये अमरीका के ख़िलाफ़ जो ईरानी जज्बात हैं, ईरान के उस साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो जज्बात हैं, यकीनन इसकी अकासी करते हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जिस तरह मैंने ये पहले कहा कि इंतहाई गैर मुवाफिक सूरत हाल के बावजूद अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान जिस तरह डटा हुआ है, और उसके ऊपर अभी जिसका मैंने जिक्र किया था, शायद उसको इतना संजीदा लोग ना देख रहे हों, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का जो इजलास किया जाना, ईरान का जो है जनरल सेक्रेटरी उसका होना, ये एक बहुत बड़ी वाज़े तौर पे इलामत है। और अमेरिका को इससे नज़रअंदाज, अमेरिका इसको किसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका बिल्कुल से समझता है कि वो एक जिसमें 150 के करीब ममालिक शरीक होते हैं, अमेरिका वहाँ शरीक नहीं हो पाता, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ अगर हम ईरान का ये देखते हैं तो इलाके की जो सूरत हाल है उसमें जो इसका किरदार एक बड़ा मुनज़म तौर पे शंघाई कॉन्फ्रेंस में उसका जो किरदार बड़ा मुनज़म दिखाई देता है, उसके साथ साथ जो अपना मौक़िफ़ ईरान ने बेहतर तौर पे पेश किया है, तो अमेरिका के लिए वाज़ह तौर पे तो थ्रेट है। बाकी ममालिक से शायद उसको इतना ख़तरा नहीं है जितना ईरान से है। और मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका की जानिब से इस तरह के जो इशारे भी मिलते हैं कि वो कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो वो बुनियादी तौर पर यही वजह है कि वो मुज़ाकरात की बात करता है, क्योंकि जब किसी भी बड़ी ताकत की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जाती है तो वो एक उसकी ताकत को तस्लीम करना होता है। ईरान का जो मौक़िफ़ है और 1979 के बाद जो उसका मौक़िफ़ मुस्तकिल चला आ रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसने अपनी जो एक मुनफरिद जो हैसियत है और ख़ास तौर पे साम्राज्य दुश्मन जो हैसियत है उसको उसने मनवाया है। जहाँ तक अभी पहले मुकर्रर जो बात कर रहे थे, मेरा उसमें ये मकसद नहीं था कि आवाम में जहाँ तक जज्बात हैं, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये शायद इस पे लोग यकीन ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तानी आवाम जो हैं अयूब खान दौर से लेके अभी तक अगर देखें तो वो अमेरिका के कभी भी हामी नहीं रहे। उन्होंने अमेरिका को कभी अपना दोस्त नहीं समझा, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था तो अमेरिका ही की दुश्मनी समझी गई उसको। और मुनज़्ज़म तौर पे पाकिस्तानी आवाम जो हैं हर फोरम पे इसका इजहार करते चले जाते हैं। और यही वजह है कि इस दफ़ा हम ये देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो वाज़े तौर पे अमेरिका के हामी होने के बावजूद उसको बहुत से ऐसे स्टैंड लेने पड़ते हैं, मसलन ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा उसको आगे उसको तेज़ करना पड़ता है, इसके साथ साथ रूस के साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है मजबूत करना पड़ते हैं। वो बुनियादी तौर पे जो वजह है वो आवाम का एक दबाव है जिससे वो अब हुकूमत नहीं निकल पाती। गो उसके मैं ये नहीं किसी तरह ये कह रही कि वो अमेरिका कोई मुखालिफ है या कुछ है, लेकिन अवामी दबाव के तहत उसको साइड पे दूसरे प्रोग्राम।
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा चूंकि अब ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है।
पाकिस्तानी हुकूमत का इस वक्त ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का, जबकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर ना किए जाए, ताल्लुकात की बेहतरी की जानिब जाना भी एक अवामी दबाव है और उसकी वजह से हुकूमत को ये करना पड़ रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब सिद्दीकी साहब। इन दिनों ख़ास तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और उसके इत्यादियों की तरफ से पाबंदियों में मज़ीद तेज़ी आ गई है और मज़ीद शिद्दत के साथ पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता एक डेढ़ साल में जब से इलाके में इस्लामी बेदारी की लहर ट्यूनिस से जो शुरू हुई है और जो अब तक आलम इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, उसके बाद से ईरान के ख़िलाफ़ इन पाबंदियों में शिद्दत काफ़ी आई है, तो कितना राबता देखते हैं आप दोनों में?
देखिए मैं एक बात उसूली तौर पे ही कहूंगा कि ये ताहूत का बहुत पुराना हरबा और हथकंडा है कि वो सेंक्शंस के जरिए जो है वो हक को दबाने की कोशिश करता रहा है। अगर आप इस्लामी तारीख पर नजर डालें तो शेब अबी तालिब में बनू हाशिम का जो वायकाट था उसका मकसद भी यही था कि किसी तरह दबाव डालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके पैरोकारों को और उनके कबीले और उनके खानदान को हक से हटाया जा सके। इस वक्त भी जो ताहूत अमेरिका जो इस वक्त सबसे बड़ा शैतान है उसके खिलाफ वो जितनी कुव्वतें मजाहमत कर रही हैं उस मजाहमत के हवाले से एक हथियार इस्तेमाल कर रहा है इक्तसादी पाबंदियों का। अब देखिए इक्तसादी पाबंदियां जिस तरह से ईरान के खिलाफ एक तवील अरसे से हर रोज आयद की जा रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ईरानी कौम उस पूरी एक दबाव में और ईरानी हुकूमत उस पूरी दबाव का मुकाबला कर रही है और यही उसकी एक जिंदा अलामत है और यही जिंदा कौमों का शियार है कि वो इस तरह के हरबों और हथकंडों में ताहूत के नहीं आते हैं। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका किया था तो प्रेफर जो है वो कानून के तहत हमारे पर भी पाबंदियां आयद की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ईरान ने अक्वाम आलम को और खासतौर पर मुस्लिम इलाकों कौमों को और इस खत्ते के ममालिक को एक नया ट्रेंड दिया है, एक नया हौसला दिया है कि वो जो है वो ताऊत के मुकाबले में मजाहमत का रास्ता अख्तियार करें और अजीमत का रास्ता अख्तियार करें, हजीमत और पसपाई के बजाय वो डट कर मुकाबला करें। और ये ऐसे मौके कौमों की जिंदगी में आते हैं और जो कौमें इन मराहिल से कामयाबी के साथ निकल जाती हैं वही सुरखरू रहती हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
ईरान के
प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया।
ये पाबंदियां आयद की जा रही हैं ईरान ने उसका मुकाबला।
बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो चाहता है, डेढ़ से दो मिनट बचा है। जैदी साहब, जैसा कि अभी शेब अबी तालिब की तरफ इशारा किया सिद्दीकी साहब ने, कई महीने कबल कायद इनकलाब इस्लामी ने फरमाया था कि अब हम यानी ईरान शेब अबी तालिब की मंजिलों से निकल कर उस मरहले को पार करके अब उहद, बद्र, खंदक और खैबर के मरहले में आ गए, क्या कहना चाहेंगे एक से डेढ़ मिनट में?
यकीन जी यकीनन आ गए हैं और अब फतह मक्का भी करीब है, ये बहुत दूर वक्त नहीं है। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो भी ईरान के इर्द गिर्द ममालिक हैं और अरब वर्ल्ड के जो मुसलमान हैं उन्हें ये तय करना होगा, बल्कि उन्हें ये अहद करना होगा कि वो इस इलाके को अमेरिकी साम्राज्य की मंडी नहीं बनने देंगे, वो ऐसे हुक्मरानों को वहाँ अपने अपने ममालिक में लाएंगे जिनका काम रबूबियत हो ना कि जुल्म और इस्तेहसाल, और इस तमाम इलाके से अमेरिकी साम्राज्य आज नहीं तो कल उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। जितना जल्दी मुस्लिम अवाम मुस्लिम अकवाम इस बात का फैसला कर लें कि वो अपने इलाकों को साम्राज्य की मंडी नहीं बनने देंगे, ये मरहला करीब आ जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
फतह मक्का यकीनी,
बहुत शुक्रिया। फतह मक्का की तारीख यकीनी तौर पर दोहराई जाएगी नाज़रीन, और वो दिन दूर नहीं چونکہ عوام بیدار ہو چکے ہیں، اب مرحلہ صرف حکمران تک رہ گیا ہے، اور حکمران یا تو رہیں گے یا جائیں گے یا سمجھیں گے یا پھر نہ سمجھی ان کا مقدر بنے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔